जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुर्वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नित्यानंद प्रभु कटक में चैतन्य महाप्रभु आदि भक्तों को साक्षी गोपाल के रहस्य को उद्घटित कर रहे हैं या बता रहे हैं और नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं उन दो ब्राह्मणों के बारे में कि वो यात्रा करके वापस आते हैं और जो वृद्ध ब्राह्मण है वो वचन देता है कि मैं अपनी जो कन्या है आपको प्रदान करूंगा उस युवा ब्राह्मण को और फिर किस प्रकार से वो युवा ब्राह्मण एक दिन उस वृद्ध ब्राह्मण के घर आता है जो अपने परिवार वालों से त्रस्त हो गए थे। ये मत विप्रचित्ते चिंतिते लागिला आरदिना लघु विप्र तार घरे आयला। तो जो वृद्ध ब्राह्मण है उन्होंने देखा कि उनका जो पुत्र है स्त्री है बंधुगण है संबंधी आदि हैं वो उनको एक प्रकार से भगवत सेवा से रोक रहे हैं। तो जो भगवत सेवा से रोकते हैं वो वास्तव में हमारे ना मित्र हैं ना संबंधी आदि हैं ना माता पिता हैं। तो ये जो ब्राह्मण बहुत चिंतित थे कि किस प्रकार से मैं गोपाल को तो वचन दिया है लेकिन उस वचन का मैं पालन नहीं कर रहा हूं। तो गोपाल का शरण ग्रहण करते हैं मन ही मन और बहुत चिंता से वो व्याकुल थे। तो एक दिन वो जो छोटा ब्राह्मण है वो उनके घर आता है। आसिया परम भक्ते नमस्कार करे विनय करिया कहे कर दुई जुड़ी। तो जो छोटा ब्राह्मण है वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक और उस वृद्ध ब्राह्मण के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हुए उनको आते ही प्रणाम करता है और बहुत ही विनम्रता से अपने जो दो हाथ हैं वो जोड़ते हुए दीनता के साथ उनसे कहता है तुम्हें मोरे कन्या दिते करे अंगीकार तो बड़े विनम्रता से कह रहे हैं कि आप तो मुझे कन्या दान रूप में देने वाले थे और आप तो अभी कुछ कह नहीं रहे हो तो आपका विचार क्या है। एतशुनि से विप्र रहे मौन धरी तार पुत्र मारी ते आयला हाथे ठेंगा करी। हाथे ठेंगा, ठेंगा का मतलब है लाठी लेके आ गया उनका जो पुत्र है। और ये जब सुना उस छोटे ब्राह्मण की बात को उस बड़े ब्राह्मण ने, तो मौन हो गए, शांत हो गए। और उसी समय उस ब्राह्मण का जो पुत्र है, जो बहुत ही क्रूर इसका था, स्वभाव का था, वो आया और अपने हाथ में लाठी लेके आ गया। अरे आधम मोर भगनी चाह विवाहिते, वामन हैया चांद जिन चाहत धरिते। अरे आधम, हे डिग्रेडेड, ये आधम व्यक्ति, नीच व्यक्ति, तुम मेरे बहन के साथ विवाह करना चाहते हो, वामन हो, वामन मतलब ठेंगू हो, और आप चांद को पकड़ना चाहते हो। हाँ, वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप अपने औकात में आ जाओ, देखो कि आप कौन हो और किसके साथ विवाह करने के लिए जा रहे हो। हाँ, वामन होने के बाद भी आप चांद को पकड़ने की आकांक्षा रखते हो। ठेंगा देखी से विप्र पलाया गेला, आर दिन ग्रामीर लोक एकत्र करिला। तो अभी वो लाठी को देखने मात्र से वो जो ब्राह्मण है पलाया गेला, वहां से भाग जाते हैं। आर दिन ग्रामीण लोग एकत्र करेला, और दूसरे दिन गांव के सारे लोगों को एकत्रित करते हैं, पंचायत, विलेजों में होता है पंचायत। पंचायत का मतलब है पांच जो प्रमुख होते हैं, पंच कहा जाता है उनको। तो ऐसे कई लोगों को एकत्रित करते हैं। सब लोग का बड़ा विप्रे डाकिया आनिला, तबे से ही लघु विप्र कही तेला गिला। तो जो पंचायत के लोग हैं उन्होंने वो बड़े विप्र को भी बुलाया और आमने सामने उनको बिठाया, और जो छोटा विप्र है वो अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। यह मोरे कन्या दिते कर छे अंगीकार, एबे जेना देना पूछा यहार व्यवहार। ये तो मुझे कन्या देने वाला था और इसने इस वचन को कहा था, बोला था, और अभी वो देना नहीं चाहता है। इसके व्यवहार के बारे में आप सब लोग पूछिए कि क्यों क्यों वो अपना जो वचन है उसका पालन नहीं करना चाहता ये ब्राह्मण। तबे से ही विप्रेर पूछिला सर्वजान, कन्या के ने ना देह जदि दिया छे वचन। तो सारे लोग उस वृद्ध ब्राह्मण को पूछने लगे कि आप कन्या देने वाले थे तो क्यों नहीं, आप अपने वचन का क्यों नहीं पालन कर रहे हो। विप्र कहे सुन लो का मोरा निवेदन, कबे की बलिया छी मोरा नाही कस्मरण। प्रभाव में आ जाता है व्यक्ति फैमिली मेंबर्स के, तो वो उनके प्रभाव में आ गया। इनके प्रभाव में पत्नी पुत्र आदि, उन्होंने कहा था कि यदि आप ऐसा कार्य करेंगे तो हम जहर पी के इस शरीर को त्यागेंगे। और उनके पुत्र ने कहा था बस आप बोलो कि मुझे कुछ स्मरण नहीं है, मैंने कब क्या बोला। हाँ, तो ये जैसे ही सुना तो वो जो ब्राह्मण कहता है आप मेरा निवेदन सुनिए कि मैंने कब क्या बोला, इसका मुझे स्मरण नहीं है। एतशुनि तार पुत्र वाक्य छल पाया, प्रागल बहैया कहे सम्मुखे आसिया। तो ये जैसे ही पिता ने बोला तो जो पुत्र है वो क्या करता है, इस अपॉर्चुनिटी को देख के तुरंत खड़ा हो जाता है और सारे असेंबली में बोलने लगता है। तीर्थ यात्राए पितार संगे छिल बहुधान, धन दे की ये दुष्टेर लेते हैलमान। कि मेरे पिता हाँ जरूर गए थे तीर्थ यात्रा, और ये छोटा ब्राह्मण भी उनके साथ गया था, लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति का मन जो है क्या हो गया, भ्रमित हो गया। जो धन प्राप्त करने की उसको इच्छा हो गई। आर के हर संगे नाही यही संगे एकल, धतुरा को आया पापे करीला पागल। तो और कोई उनके संग में नहीं था, ये अकेला ही ये छोटा विप्र मेरे पिता के साथ था और इसने बदमाशी की है, क्या इनको धतूरा खिलाया है और धतूरा खिलाने के बाद मेरे पिता पागल हो गए और सारा जो धन है उसने हरण कर लिया। सब धन लैया कहे चोर लैल धन, कन्या देते चाहिया छे उठी लवचन, उठाई लवचन। कहते इसने वो खिलाया जिसके कारण पागल हो गए। पहले तो इसने धन चोरी किया और बोला कि धन तो चोर लेके चुरा के ले गए, और मेरे पिता से बुलवाया वचन, वचन उससे उनसे कहलाया क्या कि आपकी जो पुत्री है मुझे कन्या के रूप में दीजिए। तुमरा सकल लोक करह विचारे, मोर पितार कन्या दिते यज्ञ किया रे। तो आप सब लोग विद्वान हो, पंडित हो और सभ्य लोग हो, तो आप इस पर विचार करिए कि मेरे जो पिता हैं ये कैसे इसको हा कह सकते हैं उनकी कन्या देने के लिए, इसमें क्या योग्यता है। आप लोग सभ्य हैं तो आप ही इसका विचार कीजिए। एतशुनी लोकेर मने हैल संशय, संभवे धन लोभे लोक छाड़े धर्म भय। तो अभी जो भी सारा असेंबली था वो ये जो उस ब्राह्मण के पुत्र की बातें सुनकर आपस में चर्चा करने लगे, हाँ ये हो सकता है क्योंकि व्यक्ति इन सब चीजों से आकर्षित होकर धन के लोभ से अपना जो धर्म आचरण है उसको छोड़ सकता है, छाड़े धर्म भय, और धर्म का भय भी व्यक्ति को नहीं होता हाँ उस धन के प्रति आकर्षण के कारण। तबे छोटा विप्र कहे सुना महाजन, न्याय जानी बारे कहे असत्य वचन। तो छोटे विप्र ने कहा कि आप सब महाजन हैं, आप लोग सुनिए, और ये जो व्यक्ति है मुझ पर विजय प्राप्त करने की आशा से ये झूठ बोल रहा है। कौन कह रहा है ये बातें? छोटा ब्राह्मण किनको कह रहा है? पंचायत को। यही विप्र मोर सेवाए तुष्ट जबे हैला, तोरे आमी कन्या दिबो आपने कहिला। ये जो विप्र है मेरी सेवा से संतुष्ट हुआ और इसने मुझे कहा कि आपकी सेवा से मैं संतुष्ट हूं और मैं अपनी जो कन्या है वो तुम्हें प्रदान करूंगा। तबे मुई निषेधिनो सुना द्विज वर, तुम्हारे कन्या रे योग्य नाही मुई वर। तो वो तब मैंने उनको निषेध किया कि मैं योग्य पति नहीं हूं आपकी कन्या के लिए, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। कहा तुम्हें पंडित धनी परम कुलीन, कहा मुई दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीन। ऐसे अच्छे प्यार कृष्णदास कविराज। कहा तुम्हें पंडित धनी परम कुलीन, आप तो उच्च कुल वाले हैं, धनवान हैं, पंडित हैं, और मैं नीच हूं, दरिद्र हूं, मूर्ख हूं, कुलहीन हूं। तब यही विप्र मोरे कहे बार बार, मोरे कन्या दिलु तुम्हें करह स्वीकार। तो मैं तो चाहता नहीं था हाँ, लेकिन यही ब्राह्मण मुझे बार बार कह रहा था कि आप कन्या को स्वीकार करो, वो मेरी कन्या है, मेरा अधिकार है हाँ। तबे आमी कहिलाम सुना महामती, तुम्हारा स्त्री पुत्र ज्ञाते नहा बेसम्मति। तो मैंने कहा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति महामती, हे बुद्धिमान ब्राह्मण, आप तो कह रहे हो मुझे आपकी कन्या स्वीकार करने के लिए, लेकिन आपके जो स्त्री है, पुत्र आदि हैं, और आपके जो जाति वाले लोग हैं, संबंधी हैं, उनका सम्मति नहीं होगा, वो ये चीज को मानेंगे नहीं, ये चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। कन्या दिते नारी बहवे असत्य वचन, पुनरपि कहे विप्र करिया जतन। तो वो ब्राह्मण ने कहता है कि मैंने इनको कहा कि आप अपना ये जो वचन है उसको पालन नहीं कर पाओगे, इसको पूर्ण नहीं कर पाओगे, ये वचन टूट जाएगा। तो मैंने बार बार उस चीज को उस ब्राह्मण को कहा, कन्या तोरे दिलो द्विधा ना करी हचित्ते, आत्म कन्या दिबो के बा पारे निषेधिते। तो इस ब्राह्मण ने मुझे कहा कि मैंने एक कन्या दे दी है और आप चिंतित मत हो और हिचकिचाहट मत करो, वो मेरी पुत्री है और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस चीज को मुझे रोक सकता है। तबे आमी कहिलाम दृढ़ करी मान गोपाल आगे कह ये सत्य वचन। तो मैंने फिर गोपाल के आगे इस बात को रखने के लिए उसे कहा कि गोपाल के आगे आप इस वचनों को रखो। तबे यह गोपाल आगे ते करिला कहिला तुमी जान यही विप्रे कन्या मी दिल। तो वो यही ब्राह्मण स्वयं गोपाल के आगे गए और गोपाल के आगे उन्होंने कहा कि आप जानो कि ये जो विप्र है इसको मैंने अपनी पुत्री दे दी है। तबे आमी गोपाल साक्षी करिया कहिला मतार पदे मिनती करिया। तो फिर हमने गोपाल को साक्षी बनाया और जो गोपाल विग्रह है इस चीज के साक्षी हैं और मैंने उनके चरणों का आश्रय लिया। जदि यही विप्र मोरे नादिबे कन्यादान साक्षी बोला इमु तो माय हयो सावधान। तो ये बहुत है, किसी के साक्षी बनते हैं तो जाना निश्चित होता है कोर्ट में। तो भगवान भी जब साक्षी बनने का उन्होंने स्वीकार किया तो ये छोटा विप्र कहता है कि यदि ये ब्राह्मण मुझे अपनी उसकी पुत्री नहीं देगा तो आप सावधान रहो। किसको कह रहे हैं? कृष्ण को। अभी गोपाल के आगे छोटे विप्र कह रहे हैं इन्होंने तो वचन दे दिया है लेकिन यदि ये जो ब्राह्मण यदि नहीं देंगे वहां जाकर बदल जाए इनकी मति वगैरह तो मैं आपको बुलाऊंगा, तो आप सावधान रहना। गोपाल को कहते हैं यही वाक्य साक्षी मोर आछे महाजन जार वाक्य सत्य करी माने त्रिभुवन। तो ब्राह्मण कहता है तो मैंने इसलिए इन महान पर्सनालिटी को कहा है और भगवान को मैंने बोला है कि आप साक्षी आपको देना पड़ेगा और क्योंकि आपके जो वचन है सारा जो त्रिभुवन है वो स्वीकार करता है। तबे बड़ा विप्र कहे यही सत्य कथा गोपाल यदि साक्षी देना अपने असी यथा। तो वो बड़ा ब्राह्मण कहता है कि हाँ ये सत्य कथा है, मैंने गोपाल के आगे वचन दिया था, यदि गोपाल आता है तो फिर ठीक है। तबे कन्या दिवा में जानी हनिश्चय तार पुत्र कहे यही भाल बात है। तो इस ब्राह्मण ने कहा कि तब मैं अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दे दूंगा यदि गोपाल साक्षी देने के लिए आते हैं। तो उसके पुत्र ने कहा ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण विधि का पालन करते हुए भी लेकिन भगवत विग्रह में श्रद्धा नहीं था। ये वैसे ही है, हम प्रसाद रोज पा रहे हैं लेकिन प्रसाद के प्रति फेत नहीं है, भगवत गीता रोज पढ़ रहे हैं लेकिन भगवान की जो वाणी है उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के शब्दों में श्रद्धा नहीं है भगवत गीता के। तो वैसे ही ये ब्राह्मण में भी कई मंत्रों का उच्चारण करता होगा, ट्रेडिशनली पूजा अर्चना करता होगा लेकिन फिर भी ये कन्विंस नहीं था कि भगवान के विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो वो कहता है ठीक है चलो बाहर से आएगा वो विग्रह, चलो अभी टाल देते इस ब्राह्मण को भगा देते हैं। बड़ विप्रेर मने कृष्ण बड़ दयावान अवश्य मोर वाक्य ते हो करी बे प्रमाण। तो जो बड़ा विप्र है उन्होंने सोचा कि कृष्ण बहुत अधिक दया दयालु है और मेरे वाक्य को जरूर वो पूरा करेंगे। पुत्र रमने प्रतिमाना शिवे साक्षी दिते यही बुद्धे दुई जन हैला सम्मते। तो जो उनका बेटा जो बिल्कुल नास्तिक विचारों का था ब्राह्मण होते हुए भी तो वो क्या सोचता था कि प्रतिमा केने साक्षी दिवा कि ये जो विग्रह है मूर्ति है वो कब साक्षी देती है क्या, वो क्या यहाँ चलकर नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से जो दोनों जो पुत्र और जो पिता हैं, दो अलग अलग प्रकार से सोच रहे थे। छोटा विप्र बले पत्र करह लिखान, पुनः जेना नाही चले ऐसा वचन। तो जो छोटा विप्र है वो बहुत बुद्धिमान था, वो कहते आगे फिर से ये वचन नहीं चलेगा, अभी आप क्या करो, आप लिखित रूप में मुझे दे दो कि हाँ साक्षी देने के लिए भगवान आए तो फिर आपकी जो पत्नी है जो पुत्री है वो दे देंगे। तबे सब लोग मेले पत्र तलिखिला, दुहार सम्मति लया मध्यस्थ राखिला। फिर सारे लोगों ने वो उस लेटर हेड में लिख दिया कि हाँ ये साक्षी देंगे गोपाल जी, इस बात की सारी पंचायत साक्षी हैं। तो उनके जो मध्यस्थ का काम ये सब पंचायत के लोग कर रहे थे। तबे छोटा विप्र कहे सुना सर्वजान, यही विप्र सत्य वाक्य धर्म परायण। तो छोटे ब्राह्मण ने कहा कि आप सब लोग सुनिए, ये जो ब्राह्मण है ये सत्य वाक्य बोलने वाला है और धर्म परायण है। सो वाक्य छाड़िते यहार नाही कभू मान, सर्व स्वजन मृत्यु भय कहे असत्य वचन। तो ये छोटा ब्राह्मण जानता था, वो जानता था कि ये ब्राह्मण अपने वचन से कभी अलग नहीं हो सकता है और धर्म के परायण है, धर्म का पालन करने वाला है, परंतु उसको एक ही भय है और इसी कारण से वो असत्य वचन बोल रहा है। क्या भय है कि अपने स्वजनों का मृत्यु, जो स्वजन है पुत्र श्री आदि ये सब जहर पी के मरेंगे, इसी कारण से ये भय के कारण ये असत्य वचन बोल रहा है। यहर पुण्य कृष्ण यानी साक्षी बोला ही तबे यही विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा राखी ब। तो वो ब्राह्मण छोटे कहने लगे, इसी बड़े ब्राह्मण की जो पायस एक्टिविटीज है पुण्य कर्म आदि है, मैं फिर गोपाल को बुलाऊंगा जो परम भगवान है साक्षी देने के लिए, और इस जो ब्राह्मण है उसका वचन की रक्षा करूंगा। एत सुनि नास्तिक लोक उपहास करे, केह बले ईश्वर दयालु आसित तेह पारे। तो दो प्रकार के लोग इस संसार में हमेशा हैं। कौन से दो प्रकार के लोग? आसुर और दैवी। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के थे, नास्तिक थे, वो कहते थे, वो मजाक उड़ाते थे उनका, ये क्या मूर्ति को ले आएगा। तो लेकिन कुछ ऐसे लोग होते थे वो कह रहे थे कि नहीं नहीं कृष्ण बहुत दयालु है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त के लिए, वो जरूर आ सकते हैं। तबे से छोटा विप्र गेला वृंदावन, दंडवत करी कहे सब विवरण। तो तुरंत ही छोटा जो ब्राह्मण है वृंदावन के लिए रवाना होता है और सारा जो विवरण है वो सुनाता है। ब्राह्मण्य देव तुम्ही बड़ो दया माए, दुई विप्रेर धर्म राख हई असदय। हे ब्राह्मण्य देव के प्रति अब दयामय रहने वाले कृष्ण, ब्राह्मणों के जो देव हैं वो कौन है? कृष्ण है। आप बहुत दयामय है और आप इस दया का प्रदर्शन करिए हम दो ब्राह्मणों का धर्म का पालन करवाने के लिए। कन्या पावो मोर मने यहा नाहि सुख, ब्राह्मणेर प्रतिज्ञा जाय यही बड़ा दुख। ये सब तकलीफ वो छोटा ब्राह्मण इसलिए नहीं उठा रहा है, किस लिए नहीं उठा रहा है कि उसको उनकी कन्या मिलेगी, सुंदर श्री मिलेगी, उसके लिए नहीं इतना ये हो रहा है। वो तो इसलिए है कि जो ब्राह्मण की प्रतिज्ञा है वो ये होनी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो ब्रेक हो रही है, इसी कारण से मेरे हृदय में दुख है, इसलिए मैं वृंदावन वापस आया हूं। किसको कह रहे हैं वो ब्राह्मण? गोपाल को कह रहे हैं। ये तो जानी तुम्हें साक्षी देह दया माए, जानी साक्षी ना ही देह तार पाप है। तो इसी प्रकार से तो आप दयालु होकर हे प्रभु आप साक्षी दे दीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं। और जो व्यक्ति जानते हुए भी साक्षी नहीं देता है तो वो भी उस पाप कर्म का भागीदार होता है। तो इस प्रकार से वो छोटे विप्र भगवान को बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान को पर्सन के रूप में देख रहे हैं। किस रूप में? साक्षात व्यक्ति, आगे वर्णन आएगा। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप कौन नहीं है? प्रतिमा नहीं है आप, कोई एक मूर्ति नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, कृष्ण है। कृष्ण कहे विप्र तुम्हें जा स्वभवने, सभा करी मोरे तुम्हें करी हस्मरने। अरे अरे तुम चले जाओ, आप अपने गांव चले जाओ, अपने घर चले जाओ, और जब सभा बुलाओगे तो मेरा वहां पर स्मरण कर लेना। आविर्भाव हैया साक्षी दिवस तबे दुई विप्रेद सत्य प्रतिज्ञा राखी। तो जैसे आप उस सभा में मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुरंत साक्षी दूंगा, वहां प्रकट हो जाऊंगा, और आप दो जो ब्राह्मण हैं उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। तो ये भगवान का वचन है। हाँ, भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं लेकिन अपने भक्त के वचन की हमेशा रक्षा करते। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन को कहते हैं कि अरे अरे तुम अनाउंसमेंट करो। हाँ, क्यों करो तुम अनाउंसमेंट? क्योंकि मैं कभी कभी अनाउंसमेंट करता हूँ, वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, तो वो मैं तोड़ देता हूँ। हाँ, इसलिए मेरे ऊपर फेथ नहीं है लोगों का। लेकिन तुम करो क्या कि मैं नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो क्योंकि भगवान ने महाभारत आदि युद्ध के समय या कई जगहों में अपने वचन को तोड़ दिया, लेकिन भक्तों की वचन की रक्षा की। क्योंकि भीष्म ने उस समय कहा कि आज मैं पांडवों को मारूंगा या तो कृष्ण को वो उठाना पड़ेगा, क्या अस्त्र उठाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली थे भीष्म, और इतना स्ट्रांग युद्ध किया कि पांडव मरने वाले थे, लेकिन उस समय क्या किया कृष्ण ने, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और रथ का चक्का फेंका उनकी ओर। तो वो कहाँ गिरा रथ का चक्का? बंगाल में एक गांव में, उस गांव का नाम पड़ा एक चक्रा ग्राम, और वहां किसने जन्म लिया? नित्यानंद प्रभु। आज भी उसको एक चक्का, वही चक्का कुरुक्षेत्र से फेंका था, कहां जाके गिरा? एक चक्रा ग्राम। एक चक्रा ग्राम नित्यानंद प्रभु का वो धाम है। तो इस प्रकार से नाना हजार उदाहरण है कि भक्त केवल प्रतिज्ञा करता है, वचन देता है, तो कृष्ण को उसकी पूर्ति करने के लिए अपने वचन को तोड़ना पड़ता है। विप्रबल जदि हो चतुर्भुज मूर्ति तबो तुम्हार वाक्य कारू नहा विप्रतिति। तो बड़े हंसते हुए वो ब्राह्मण कहता है कि आपके शब्दों में कोई विश्वास नहीं करेगा, क्यों? चाहे आप चतुर्भुज के रूप में वहां प्रकट हो जाओ, वहां कोई नहीं विश्वास करेगा। यही मूर्ति किया जदि यही श्री वदने साक्षी देह जदि तबे सर्वलोक सुने। चतुर्भुज का काम नहीं चलेगा, इसी मूर्ति को जाना पड़ेगा, और आपके इस श्री वदन से जो आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, इसी मुख कमल से आपको साक्षी देना पड़ेगा ताकि सब लोग इसको सुने। तो ऐसे ये कह रहे हैं साक्षी गोपाल को, जो ये छोटे ब्राह्मण है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जो अभिन्न है अपने विग्रह से। कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोता हना सुनी विप्र बोले प्रतिमा है या कहो केने वाणी। तो अभी दोनों आपस में कह रहे हैं, कृष्ण कहते हैं प्रतिमा चले कोथा ये नहीं सुनी, प्रतिमा ये मूर्ति कभी चलती है ये किसने सुना है क्या? हाँ, कौन कह रहे हैं? कृष्ण। और ब्राह्मण कहता है प्रतिमा है या कह केने वाणी, और ये भी किसने सुना है कि प्रतिमा होके वो बोलती है? तो भगवान को पकड़ते हैं, प्रतिमा नह तुम यहां अभी कहते हैं, प्रतिमानः तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्रलागी कर तुम्हें आकार्य करण। तो आप तो प्रतिमा नहीं है, आप कौन है? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो इस भावना से विग्रह को देखना होगा कि वो साक्षात कृष्ण है। विप्र लागे कर तुम्हें, और विप्र के कारण जो डिफिकल्ट कार्य है आज तक जो कार्य नहीं हुआ था वो आप करके दिखाओ सारे संसार को। हसिया गोपाल कहे सुना ब्राह्मण तुम्हारा पाछे पाछे आमी करी भगवान। तो हंसते उस ब्राह्मण को कहते हैं कि हे ब्राह्मण तुम सुनो, आपके पीछे पीछे मैं चलूंगा। उलटिया आमा तुम्हें ना देखिया दर्शने, आमा के देखिले आमी रही बसे स्थाने। तो लेकिन एक शर्त है, जब आप चलोगे तो आपको मुझे उलट कर नहीं देखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि मैं आपके पीछे आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। और जैसे आप मुझे जहां देखोगे उस समय में उसी स्थान में ही स्थित हो जाऊंगा। नुपुरेर ध्वनि मात्र आमार सुनिबा, से शब्दे आमार गमन प्रतीति करिबा। लेकिन मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं ये आपको कैसे पता चलेगा? नुपुर की ध्वनि आप सुनते रहोगे और उस शब्द के द्वारा मेरा जो आपके पीछे जो आने का गमन है वो आप जान पाओगे। एक शेर अन्न रांधी करह समर्पण, तहा खाया तुम्हारे संगे करी भगवान। तो रोज एक करना पड़ेगा, एक शेर मीन्स एक किलो अन्न आपको कुकिंग करना पड़ेगा और मुझे ऑफरिंग करनी पड़ेगी। तो कितना महत्वपूर्ण है, भगवान एक भी दिन भूखे नहीं रहना चाहते, फास्टिंग नहीं है कृष्ण के लिए। तो आपको समर्पित करना पड़ेगा एक किलो अन्न रोज कुकिंग करके, और उसको खाकर फिर मैं आपके पीछे पीछे आते रहूंगा। आरदिन आज्ञा मांगी चलेला ब्राह्मण, तार पाछे पाछे गोपाल करेला गमन। तो एक दिन आज्ञा मांग कर ब्राह्मण आगे चला और गोपाल उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगे। नुपुरेर ध्वनि सुनी आनंदित मन, उत्तम अन्न पाक करी कराय भोजन। तो नुपुर का ध्वनि इस ब्राह्मण को सुनाई दे रहा था और गोपाल उनके पीछे पीछे जा रहे थे, बहुत अधिक हर्ष अनुभव कर रहे थे। तो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उन्होंने फर्स्ट क्लास जो राइस है वो कुक किया करते थे गोपाल के लिए, ताकि गोपाल उसको ग्रहण किया करते थे। यही मते चले विप्र निजे देशे आयला, ग्रामेरा निकट आसी मने ते चिंतिला। तो उस समय वो ब्राह्मण गांव के निकट आया और मन ही मन वो सोचने लगा, एवे मुई ग्रामे आयनु जाए मु भवान, लोकेर कहे बगिया साक्षी रागमान। तो वो सोचने लगे कि मैं अभी गांव जाता हूं और घर भी जाता हूं और सारे लोगों को कहता हूं कि साक्षी देने के लिए गोपाल का आगमन हुआ है। साक्षाते ना देखिले मने प्रतीति ना हाय, यहां यदि रहे तब ना ही किछु भाय। तो लेकिन यदि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखो और सीधा गांव में जाऊं कि गोपाल आया है बताने के लिए तो कठिन होगा। इससे अच्छा क्या है कि मैं अभी मुड़ के देखता हूं, क्योंकि अभी गांव के बिल्कुल उसमें आ गए थे, सीमा पर आ गए थे गोपाल। चाहे इधर वो खड़े रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है या भय नहीं है। एत भावी से विप्र फिर या चलिला, हासिया गोपाल देव तथा ये रहिला। तो उस ब्राह्मण ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो गोपाल उस ब्राह्मण के साथ हंसने लगे और गोपाल उसी स्थान में खड़े रहे। ब्राह्मणे र कहे तुम्हें जहा निज घर, एथाय रही ब आमी ना जाब अथ पर। तो ब्राह्मण को कहते कि तुम आवे अपने घर जाओ और मैं यहाँ ही रहूंगा और जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं इधर ही खड़ा रहूंगा और इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। तबे से विप्र जाय नगर कहिला, सुनिया सकल लोक चमत्कार हैला। तो ब्राह्मण कितना पवित्र है, कितना शरणागत होगा वो ब्राह्मण हृदय में। ऐसे नहीं कि उस पत्नी को प्राप्त करने के लिए इतना उन्होंने ये करना पड़ा उनको, नहीं, उनका इतना स्वाभाविक प्रेम गोपाल के प्रति था कि गोपाल उनके बंधन में बंध गए। प्रेमे तार वश है, प्रेमे तार भजी, चैतन्य भागवत में कहा गया है कि जो कृष्ण है वो प्रेम से वश होते हैं और व्यक्ति को उनका भजन भी कैसे करना चाहिए, प्रेम पूर्वक सावधान होकर। तो तबे से ही विप्र जाए नगर कहिला, और सारे लोग आनंदित हो गए चमत्कार को सुनकर। आइल सकल लोक साक्षी देखी बारे, गोपाल देखिया लोक दंडवत करे। तो हजारों हजारों सारे लोग साक्षी देने वाले गोपाल को देखने के लिए आए, और गोपाल को देखकर सारे लोग उनको दंडवत करने लगे। गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदित, प्रतिमा चलिया आयला सुनिया विस्मित। तो गोपाल का सौंदर्य देखने मात्र से उस गांव के लोग आनंद का अनुभव करने लगे। प्रतिमा चलिया आयला, कितना अद्भुत है कि वहां के विग्रह वृंदावन से चलकर आए हैं, और ये सुनकर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तबे से ही बड़ा विप्र आनंदित हैया, गोपाले र आगे पड़े दंडवत हैया। तो वो जो बड़ा ब्राह्मण था वो भी आनंद का अनुभव करते हैं और गोपाल के आगे दंडवत करते हैं। सकल लोके र आगे गोपाल साक्षी दिला, बड़ा विप्र छोटा विप्रे कन्या दान कैला। तो गोपाल सबके सामने साक्षी देते हैं, और छोटा विप्र और जो बड़ा विप्र है, उन जो बड़े विप्र ने छोटे विप्र को अपना जो कन्या है वो प्रदान की। तबे से दुई विप्रे कहिल ईश्वर, तुम्हें दुई जन्मे जन्मे आमार किंकर। तो जो भगवान है वो अपने ये जो भक्तगण है, कौन से भक्तगण, नित्य जो पार्षद है, उनके नित्य जो संगी है, उनके साथ इस प्रकार के दिव्य लीलाएं करते हैं। और भगवान ने कहा उनको, गोपाल ने कहा तुम्ही दुई जन्मे जन्मे हमारा किंकर, इस जन्म में आप मेरे सेवक नहीं है, जन्मों जन्मों से आप मेरे सेवक हो, सेवा में रत हो। दुहार सत्य तुष्ट हैला दुहे मानवर, दुई विप्र वर मागे आनंद अंतर। तो भगवान उनसे संतुष्ट हो जाते हैं कि आपके जो ट्रूथफुलनेस से, सत्य वचन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और आप कुछ आशीर्वाद मांगिए। तो जो दो ब्राह्मण हैं एक आशीर्वाद मांगते हैं। जदि वर दिवे तबे रह यही स्थाने, किंकर दया तब सर्वलोके जाने। तो ब्राह्मण भगवान से एक ही वर मांगते हैं कि यदि वर देना चाहते हैं तो एक ही वर दे, क्या, इस स्थान में आप निवास करो और सारे जगत को इस महिमा का ताकि प्रदर्शन हो कि आप कितने दयालु हैं, मर्सीफुल हैं अपने सेवकों के प्रति, कि उस सेवकों का वचन की पूर्ति करने के लिए आप प्रतिमा के रूप में होने के बावजूद भी इतने हजारों मील आप चल के आए। गोपाल रहिला दुहे करे न सेवान, देखिते आइला सब देशेर लोक जान। तो गोपाल भी वहां रहे और बहुत ये जो ब्राह्मण है उनकी सेवा में लगे हुए थे, और इस चीज को सुनकर आसपास के कई शहरों से, टाउन से, गांवों से लोग गोपाल को देखने के लिए आते थे। से देशेर राजा आइला आश्चर्य सुनिया, परम संतोष पाइला गोपाल देखिया। तो उस देश का राजा भी आया गोपाल को देखने के लिए, और गोपाल को देखकर संतुष्टि का अनुभव उन्होंने किया। मंदिर करिया राजा सेवा चलाइला, साक्षी गोपाल बलितारा नाम ख्याति हैला। तो राजा ने तुरंत मंदिर बनवाया, और तब से इनका नाम क्या हुआ, गोपाल का, साक्षी गोपाल, ख्याति हैला। दूर दूर के देशों में उनकी जो फेम है यश है वो फैल गया। यही मत विद्यानगरे साक्षी गोपाल सेवांगीकार करे अछिन चिरकाल। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं इस प्रकार से विद्यानगर में साक्षी गोपाल सेवा स्वीकार करते हैं बहुत लंबे समय से, या लंबे समय तक उन्होंने सेवा स्वीकार की। उत्कलेर राजा पुरुषोत्तम देव नाम से देश जिनी नील करिया संग्राम। तो ओडिशा के राजा पुरुषोत्तम देव ने जब उस देश पर आक्रमण किया था तो तब उन्होंने साक्षी गोपाल को वहां से वो ले आए थे, ओडिशा ले आए थे, क्योंकि उनका बहुत आकर्षण था पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव कौन है? राजा प्रताप रुद्र के पिता हैं। प्रताप रुद्र राजा के बारे में हम सुनते हैं ना चैतन्य चरितामृत, तो उनके पिता हैं पुरुषोत्तम देव। सही राजा जिनी नीला तार सिंहासन माणिक्य सिंहासन नाम अनेक रतन। और उस राजा ने, पुरुषोत्तम देव ने जो विद्यानगर का जो राजा है उसको जीतने के बाद उनका जो माणिक्य सिंहासन है जो रत्न आदि से बना हुआ वो भी अपने साथ ले जाते हैं। पुरुषोत्तम देव से ही बड़ा भक्त आर्य गोपाल चरण मागे चल मोर राजा। तो ये बहुत बड़े भक्त थे पुरुषोत्तम देव। इतने बड़े भक्त कि जब वो युद्ध करने के लिए भी निकलते थे तो जगन्नाथ और जो बलराम है कृष्ण बलराम वो उनके साथ घोड़े पर सवार होके निकलते थे और जहां जाते थे वहां विजय प्राप्त करते थे। वो कथा आता है एक नहीं क्या वो इधर इसी राज्य के ऊपर गए थे लेकिन बिना परमिशन के गए थे। तो वो हार के वापस आ गए। तो फिर देखा रे क्या हो गया, जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने पूरा रात बिताया भगवान को प्रार्थना की, फिर दूसरे दिन परमिशन लेके निकले। तो उनसे पहले ही जो बलराम और जगन्नाथ देव एक काले घोड़े पर और एक सफेद घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। इनका सेना ओडिशा से निकल रहा था, वो झील है ना लेक, कौन सा लेक है, चिल्का लेक। चिल्का लेक की ओर से जा रहे थे, साउथ इंडिया में है ना ये कर्नाटका आंध्रा वगैरह, तो वहां से जा रहे थे। तो चिल्का लेक के पास एक एक, एक स्त्री, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, तो इनको बहुत प्यास लगी थी। तो एक स्त्री मटका लेके जा रही थी, तो उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा छाछ है। तो वो कृष्ण बलराम जगन्नाथ और वो कहते हाँ मुझे दे दो, इन्होंने पूरा पिया। वो कहते पैसे दे दो, तो इनके पास तो इंडियन करेंसी है नहीं, भगवान के पास कहाँ होगी, वो तो उनके डोनेशन बॉक्स में होती है। और उसका चाबी किसके पास होता है, भक्तों के पास। तो इन्होंने सोचा अभी क्या दे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मेरे हाथ में अंगूठी है, भगवान को हम अंगूठी पहनाते हैं ना, तो भगवान जगन्नाथ के हाथ में अंगूठी है। और ये भी एक आश्चर्य है, उनको हाथ ही नहीं है तो अंगूठी कैसे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को है क्या हाथ, नहीं है। तो कहते अंगूठी है, ये अंगूठी आप ले लो, और जब मेरे पीछे जो राजा वगैरह आए हैं हम उसके सेनापति हैं, आप उनकी अंगूठी देकर उनसे धन ले लो। तो वो वेट करती है तो देखती है कि सारे राजा वगैरह है, तो उस स्त्री चिल्लाते हुए उस राजा रुकता है, बात करता है, और अंगूठी जैसे देखता है कहते आपके दो सैनिक गए आगे एक काले घोड़े पर और एक सफेद घोड़े पर, इसलिए आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तभी भी वहां बड़ा सा वो बना है घोड़े और जगन्नाथ बलदेव बैठे उसके ऊपर। तो जैसे राजा पुरुषोत्तम देव ने वो देखा अंगूठी देखा तो उनको तुरंत स्मरण आया नहीं ये कोई नॉर्मल सैनिक नहीं है। इन्होंने बोला काला घोड़ा और सफेद घोड़े पर गए थे, समझ गए एक काला तो जगन्नाथ जी है और सफेद कौन है, बलराम जी। तो उन्होंने कहा रे, तो उसको कुछ धन नहीं दिया, कई गांव दे दिए उसको, उसका एक आज भी उस नाम का जो गांव का जो नाम है उस स्त्री के कारण ही है। पूरे कुछ गांव दे दिए उसको ये करने के लिए, उसके अधीन थे। तो ऐसे जो पुरुषोत्तम देव हैं वो जगन्नाथ के बड़े महान भक्त थे और उन्होंने जब वहां देखा गोपाल का विग्रह, तो गोपाल के चरणों में जाके प्रार्थना की, क्या चलो मोर राज्य, हे गोपाल आप कहां चलो, मेरे राज्य में चलो। तारो भक्ति वशे गोपाल तारे आज्ञा दिल, गोपाल लैया से कटके आइल। तो उनके भक्ति में वश होकर जो गोपाल है वो आज्ञा प्रदान करते हैं, और फिर जो गोपाल कटक के लिए आते हैं इस राजा के साथ। जगन्नाथ आनी दिल माणिक्य सिंहासन, कटक के गोपाल सेवा करिल स्थापन। तो फिर जगन्नाथ को उन्होंने रत्नों से बना हुआ सिंहासन दिया। तो इन राजाओं का एक गुण है, सारा धन और ऐश्वर्य के साथ वो भगवान की सेवा करते। इसलिए दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े मंदिर बने हैं वो सब महान महान राजाओं ने, जैसे विजय प्राप्त होके आते थे तो जो भी धन आता था उसके द्वारा वो तुरंत टेंपल कंस्ट्रक्ट करते थे। जैसे जगन्नाथ मंदिर बना, तो उसका हिस्ट्री पढ़ रहा था मैं, तो उस समय ये जो राजा 1200 साल पहले छोड़ गंगा देव आदि थे जो उड़ीसा के, तो वो उन्होंने कई प्रांतों में विजय प्राप्त की थी और हजारों मतलब धन प्राप्त किया था। तो वो धन बड़े बड़े हाथियों में वो लेकर आते थे, कई हाथी उसको वहन करते थे। और फिर जगन्नाथ मंदिर में एक सोना कुआं है, सोना कुआं मतलब वो धन रखने के लिए कहाँ रखे, तो ये कुआं बनाया था जिसके अंदर हाथियों का जो लोड आता था धन सारा उसमें डाल देते थे, गोल्ड आदि कॉइन सब कुछ, और फिर उसको यूज करते थे टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ऐसा इतना बड़ा वो मंदिर उन्होंने बनाया। तो ऐसे जो राजा लोग हैं वो भगवत सेवा में लगाते थे, क्योंकि विजय उनको प्राप्त होती थी। विशेष रूप से जो उड़ीसा के राजा हैं वो जगन्नाथ जी के हमेशा भक्त रहे हैं, कोई भी जो राजा हैं, और बहुत प्रिय थे उन सब राजा उनको जो जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ है आने दिला तो माणिक्य सिंहासन देते हैं और इनको स्थापित करते हैं। ताहर महेशी आयला गोपाल दर्शने, भक्ति करी बहु अलंकार कैल समर्पणे। तो एक दिन जो राजा है वो अपने पत्नी के साथ आता है इनका गोपाल का दर्शन करने के लिए। तो उनकी जो पत्नी है सारे जो अलंकार है वो गोपाल को अर्पण करती है। अरे विशेष लीला है, कल हम कंटिन्यू करेंगे चैतन्य चरितामृत के इस लीला को रीडिंग। तो और इस लीला से भी भगवान दिखाते हैं कि वो वास्तव में साक्षात ये है कृष्ण है, मूर्ति नहीं है, विग्रह है। हाँ, तो ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो भावना कैसे विकसित हो सकती है, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि यदि उस भावना को अनुभव करना है कि साक्षात ये भगवान है, तो जो वैष्णव एटिकेट है या